O mag nejen ty v rámci programu dělášováky, tak co mi to mě to smějí všichni jenom. Svět je jen na mnoho bystem tát, tam je nebudu. Co jen bylo pak dáme, jen bylo dát, co mám dát. Já jsi Krišna, co jen to mám tělá, co jen dvojí tak dát, co jsi vás řekl, pak. Hej, Krišna, hej, Krišna. Hej, Krišna, hej, Krišna, hej, Krišna, hej, Krišna, टेक्स्ट नंबर 23 तक चर्चा की थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के यज्ञों की इन्फॉर्मेशन दी थी। अब भक्तों ने यज्ञों का एक चार्ट बनाया था, जिसमें कौन सा यज्ञ किसके मन में आता है, मन के वश मन नियंत्रण करने के विषय में है, बुद्धि का उपयोग है या इंद्रियों का उपयोग है इत्यादि आपने एक्सरसाइज किया था। मूल उद्देश्य ये था कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, योग्यता के अनुसार भगवान को किसी न किसी तरह से कुछ अर्पण करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे। कोई अष्टांग योगी, कोई ज्ञान योगी, कोई कर्म योगी, दूसरे शब्दों में यहाँ पर जो कुछ ऐसा श्लोक थे यज्ञ के, उसका मूल उद्देश्य योगा लैडर के कुछ स्टेप्स को ब्रीफ करना था कि किस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग मार्ग का अनुसरण करके उसी एक लक्ष्य के प्रति प्रयास करते हैं। ये कोई अलग अलग लक्ष्य के साथ नहीं करते, ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ पर जो लक्ष्य बताया गया है वो है ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति, कौन से ज्ञान की प्राप्ति, उसके विषय में इसके पहले वाले श्लोकों में बताया था, इसमें जो तीन श्लोक थे 20, 21 और 22, इसमें बताया था कि कौन से ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति भगवान की भावना में स्थिर रहता है, शरीर की भावना से पर रहता है, द्वंद्व से मुक्त रहता है, सुख दुख समान रहता है, उसके विषय में तीन श्लोकों में उसकी भावना बात हुई थी। तो आप देख सकते, समझ सकते हो कि पहले भगवान ने बताया कर्म, सकाम कर्म के विषय में बताया था पहले इसी अध्याय में, कि जिसमें कर्म का प्रयोजन, कर्म का पालन करना चाहिए और फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। फिर धीरे धीरे भगवान ने बताया कि फल में आसक्ति नहीं रखकर के कर्म करना चाहिए, इसको ज्ञान की अवस्था कहते हैं। ज्ञान शुष्क नहीं है, जिसका अर्थ ये नहीं कि इसमें कोई कर्म होता ही नहीं। इसलिए भगवान ने उसके सिम्टम बताए, कैसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं भगवान, किस प्रकार के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो वो 20, 21, 22 में बताया कि जिस व्यक्ति ने ज्ञान को प्राप्त किया हो, आध्यात्मिक ज्ञान को, और उसके आधार पर अगर वो कर्म कर रहा है तो वो व्यक्ति कैसा होता है, तो उसका वर्णन 20, 21, 22 में बताया। उसके पश्चात भगवान ने इस ज्ञान की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताए यज्ञ के माध्यम से, कि कुछ लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये तरीका लेते हैं, कुछ लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूसरा तरीका लेते हैं, कुछ अष्टांग योग लेते हैं, कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करते, कुछ गृहस्थ का जीवन निर्वाह करते हैं। इस तरह से अलग अलग मार्ग बताए, कोई प्राणायाम का उपयोग करता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा था कि इसमें से एक भी मार्ग ऐसा नहीं है कि जो आपको भक्ति दिला सके। इनके बल से तो भक्ति नहीं मिल सकती, अर्थात इस मार्ग को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जिसकी चर्चा आगे हुई है, उनका भविष्य निश्चित नहीं है। अर्थात इन लोगों ने मार्ग को स्वीकार तो किया है, मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन इस मार्ग पर बने रहेंगे और अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर भगवान ने बताया कि ये जिस ज्ञान जिसकी हमने चर्चा की और जिसको प्राप्त करने के अलग अलग तरीके बताए, उसको प्राप्त करने का साधारण और सिंपल जो सरल मार्ग कौन सा है, क्या उपाय है? ये तो तरीके अलग अलग थे अष्टांग योग ज्ञान योग के, लेकिन ज्ञान प्राप्ति की सबसे सरल सबसे सीधी रीत क्या है वो भगवान बताते हैं टेक्स्ट नंबर 34 में, तो वो आप पढ़िए।
तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है।
हाँ, ये है ज्ञान प्राप्ति करने का उपाय, किस तरह से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर जिस ज्ञान की बात हुई है वो ज्ञान शुष्क तत्व ज्ञान या फिर ब्रह्म ज्ञान या फिर शरीर और आत्मा का ज्ञान केवल इतना है, ये नहीं है। यहाँ पर जिस ज्ञान की बात हुई है उस ज्ञान का नाम है आध्यात्मिक ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अर्थात मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है और मुझे किस तरह से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, क्या उपाय है कि मैं इस ज्ञान का उपयोग करके भगवान के शरणागत हो सकूं, अर्थात भगवद गीता का समरी, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो यहाँ पर श्लोक की शुरुआत हुई है तत् के साथ, तद्विद्धि, इस तरह से इसका शुरुआत हुआ है। तत् का अर्थ होता है कि वो ज्ञान, कौन सा ज्ञान, जो 20-21-22 में जिसके सिम्टम बताए थे वो ज्ञान, तत् वो आध्यात्मिक ज्ञान, उसको प्राप्त करने के लिए उसकी विधि क्या है, प्राप्त करने की विधि क्या है। पहले तो है प्रणिपाते न, उस ज्ञान को जानने के लिए, तद विद्वी, विद्वी का अर्थ तो जानना, उसको जानने का उपाय है कि पहले सबसे पहले प्रणिपात है ना। प्रणिपात का अर्थ होता है कि व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। पानी का जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता कभी। नदी होती है ऊपर से नीचे बहती है, कृपा ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। तो इस तरह से ज्ञान का जो अमृत है उसका फ्लो भी ऊपर से नीचे की ओर आता है, अर्थात जो व्यक्ति जितना ज्यादा नीचे है, जो जितना ज्यादा नम्र है, उसको उतना अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है वो है विनम्रता। विनम्रता का अर्थ होता है कि गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता। कई बार कुछ लोग आध्यात्मिक गुरु को मिलते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु को कहते हैं, यस गुरु महाराज वो तो मुझे पता है, हाँ वो तो मुझे पता है, आई नो दैट, हाँ मैंने सुना हुआ है, वो कल ही लेक्चर में सुना था महाराज ने, वो सब मुझे पता है, वो तो मैंने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम में। जैसे गुरु कुछ भी बताते हैं, कई बार देखा है मैंने कुछ विषय ऐसा बताते रहते कि आई नो दिस आई नो दैट आई नो दिस आई नो दैट। गुरु कभी कई बार कुछ आदेश देते हैं तो सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, गुरु माँ अगर ऐसा होता है तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो गुरु के सामने विनम्र होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कहा था, भगवान खुद बता रही है, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। गुरु ने देखा कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। भगवान ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा, मूर्ख तुम्ही तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम मूर्ख हो। किसको बोला? भगवान को बोला। किसने बोला? गुरु ने, आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें वेदांत का कोई अधिकार नहीं है, तुम वेदांत पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम वेद समझ नहीं सकते, इसलिए क्या करो, कृष्ण नाम जप करो, यही सर्व शास्त्रों का सार है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गुरु ने कहा कि मूर्ख तुम्हें, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। बाद में फिर मैंने एक मंत्र दिया गुरु जी ने मुझे, तो हरे कृष्ण मंत्र, तो मैं जप करना शुरू किया चैतन्य महाप्रभु बता रहे, और जप करने के बाद तो मेरा पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरे सब अज्ञानता दूर हो गई और मुझे तो दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे, आंखों में से अश्रु धारा बहने लगी, रोए खड़े हो गए, जमीन पे लोटपोट होने लगा। तो मैं गुरु के पास गया और गुरु को जाके कहा किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारबल, गुरु महाराज आपने क्या मंत्र दे दिया मुझे, किबा तारबल, उसका क्या शक्ति क्या है, जपीते जपीते आमी होए लो पागल, जब तक मैं पागल हो गया, इतना शक्तिशाली मंत्र तुमने दे दिया। ये चीज चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे प्रकाशानंद सरस्वती को कि मैं मूर्ख हूं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान हो, कथाकार हो, एमए पीएचडी हो, कोई स्कॉलर हो, आईआईटीएन हो, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, जब वो गुरु के सामने जाता है तो वो मूर्ख नंबर एक होता है, उसको कुछ नहीं पता, आध्यात्मिक दृष्टि से वो मूर्ख है। और इसी भाव को हमेशा याद रखना चाहिए, गुरु के सामने विद्वत्ता बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का अर्थ होता है भारी, जो ज्ञान में भारी है आपसे, उसको गुरु कहते हैं। तो पहला है प्रणिपात देना, विनम्रता से आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हो या जाए गए थे जब आपकी स्कूल स्टूडेंट लाइफ में, तो आप लोग शिस्त का पालन करते थे, राइट? खड़े होना पड़ता था, आपके प्रोफेसर आते थे तो यस टू रिस्पेक्ट, और फिर जब उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना तो आपको हम्बली रिक्वेस्ट करके विनम्रता से पूछना पड़ता, यू कैन नॉट जस्ट ए यू वांट टू टीच मी थ्री अदरवाइज जस्ट गेट लॉस्ट, कांट से दैट। ये एक तरीका है ही नहीं, प्रभुपाद हमेशा कहते थे इस बात को, कोई व्यक्ति उनसे तर्क करता था, चैलेंज करता था, तो प्रभुपाद कहते थे शिक्षा प्राप्त करने का ये तरीका नहीं है, अगर आप जानना चाहते हो तो विनम्र रहो, यू कैनॉट आर्ग्यू, यू कैनॉट चैलेंज। तो पहला विनम्रता, ये चीज सब जगह होती है, आध्यात्मिक जीवन में भी सब जगह, जहां से आपको कुछ सीखना है तो नम्र रहना पड़ेगा। दूसरा परिप्रश्न है ना, इंक्वायरी करना चाहिए विनम्रता से, प्रश्न पूछने चाहिए, क्या क्या उपाय है, क्या करना चाहिए मुझे। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसका बात करते हैं, इस श्लोक का अनुवाद खत्म करके हम उस तात्पर्य को पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया है परिप्रश्न का अर्थ होता है कि उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए और कोई प्रश्न नहीं। क्या लगता है गुरु माया आपको, शेयर मार्केट डाउन हो गया क्या, ऊपर हो गया या फिर गुरु माया आपको क्या, आपके दिव्य दृष्टि क्या कहती है, 2019 में किसकी सरकार आएगी? इस प्रकार के प्रश्न आध्यात्मिक गुरु को नहीं पूछे जाते। मेरा बेटा करेले की सब्जी नहीं खाता गुरु जी, क्या करे? तो इस प्रकार के प्रश्न गुरु जी को नहीं। एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं एक बार गुरु जी के बाजू में बैठा था, गुरु जी सब भक्तों को मिल रहे थे, उस समय मैं गुरु जी के बाजू में ही था, तो एक शिष्य आए और गुरु महाराज को पूछा कि गुरु महाराज एक प्रश्न है, महाराज ने पूछा कोई प्रश्न है तो बोलो। तो महाराज कहा कि पहले तो एक दो प्रश्न पूछे, फिर कहा महाराज और एक प्रश्न है। तो महाराज ने कहा क्या प्रश्न? बोले मेरा छोटा बेटा है ना, वो करेले की सब्जी नहीं खाता है, वो क्या करे? तो महाराज हंसने लगे। फिर बोले मैं क्या करूं उसमें, अगर वो करेले की सब्जी नहीं खाते तो। तो इस तरह से कभी भी कोई इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड। कई बार भक्त लोग ये सोचते हैं कि गुरु महाराज को नहीं पूछना तो अच्छे प्रश्न भी नहीं पूछते, जो पूछने चाहिए जो प्रश्न वो भी नहीं पूछते, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, गुरु जी पूछते हैं आप कोई प्रश्न है तो पूछिए, पहले 10 बार सोचेगा पूछूं मूर्ख दिखूंगा पागल लगूंगा, नहीं पूछना है, सबको ओपन हो जाऊंगा, सब लोग सोचेंगे अरे इतना भी नहीं आता। तो ऐसे डर रहता है मन में, ये प्रश्न शर्म आती है, कैसे प्रश्न पूछे पब्लिक में इतने सबके सामने, कैसे प्रश्न पूछे। तो इस प्रकार का विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न से कई लोगों का फायदा हो सकता है, अगर आपके आप प्रश्न उचित है आध्यात्मिक है। तो इसलिए प्रश्न पूछने चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए, मुख्य रूप से आपके आध्यात्मिक जीवन से संबंधित सभी प्रश्न पूछने चाहिए। आपके जीवन के जो मेजर डिसीजंस है, जैसे घर बदलना है या फिर शादी करना है या फिर बिजनेस चेंज करना है या कंट्री चेंज करनी है, इस प्रकार के जो मेजर डिसीजंस है उसके विषय में गुरु को पूछना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके आध्यात्मिक जीवन को संबंधित है, इससे आपके आध्यात्मिक जीवन पर इसका असर हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए आध्यात्मिक गुरु को। तीसरा है सेवया, सेवा करनी चाहिए। सेवा का अर्थ होता है आप बापू की सेवा करो या मानी की सेवा कर सकते हो। बापू की सेवा का अर्थ होता है गुरु की आवश्यकताओं के लिए जो कुछ आप कर सकते हो, जैसे उनके कमरे को सफाई करना, उनके वस्त्रों को सफाई करना, उनके चरण दबाना, उनकी यात्राओं के प्रबंध करना, उनको दक्षिणा देना, उनकी सेवा किसी भी तरह से कर सकते हो। तो इस प्रकार से गुरु जी का सेवा करना चाहिए। एक बार पृथ्वी महाराज ने 4 कुमारों को कहा कि आपने मुझे ज्ञान दिया तो नियम के अनुसार मुझे आपको दक्षिणा देना चाहिए, लेकिन ये सारा राज्य, पृथ्वी महाराज तो राजा थे ना, तो बोलिए सारा राज्य जो है वो सारा राज्य ब्राह्मणों का है, क्षत्रिय जनरली प्रोप्राइटरशिप का दावा नहीं करता। आजकल जैसे मेरा देश, आई एम द किंग, मैं देश का राजा हूँ, ये राजा, ये राज्य जो होता है वो ब्राह्मणों की संपत्ति मानी जाती है, लेकिन ब्राह्मण इसके मैनेजमेंट में नहीं घुसते, उसको राज्य चलाने में नहीं, राजकारण में नहीं जाते ब्राह्मण लोग। तो इसलिए क्या करते हैं, वो किसी बुद्धिमान प्रबल योग्य क्षत्रिय को इसके कार्यभार दे देते, इसका कार्यभार तुम इसका समझाए, अर्थात दया क्षत्रिय जो राजा है वो ब्राह्मणों का दिया हुआ राज्य को व्यवस्थित कर रहा है, बस उसका अपना कुछ नहीं है, सारी संपत्ति ब्राह्मणों की है, क्योंकि यही शास्त्र का विधान। इसलिए ब्राह्मण अगर कभी कुछ मांगे तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकते। ब्राह्मण अगर कहे कि मुझे 4 गाय चाहिए तो देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो तो राज ब्राह्मण की ही है। ब्राह्मण अगर उसको कोई भी सेवा कर मांग सकता है, कोई भी दक्षिणा मांग सकता है। तो ये प्राचीन काल की स्थिति है, ये वर्णाश्रम की स्थिति है। तो परिप्रश्न है ना, सेवा या सेवा करनी चाहिए गुरु की, उपदेक्षंती, फिर वो गुरु जी आपको उपदेश करेंगे, ते ज्ञान हम आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ज्ञान को अनुभव कर चुके हैं, आत्मसात कर चुके हैं। ज्ञान न तत्वदर्शी न, यहाँ पर तत्वदर्शी शब्द का उपयोग हुआ है। तत्वदर्शी शब्द का अर्थ होता है जिसने तत्व का दर्शन किया हो, जिसने अनुभव प्राप्त किया है ना। जैसे आपकी, आप समझ लो कि कोई चीज आप पूर्ण रूप से आत्मसात किया है, कोई कुकिंग एक्सपर्ट है, कोई ना कोई किसी कला में एक्सपर्ट है, तो उस व्यक्ति को पूरा अनुभव है। तो आप उसके पास जाओगे कोचिंग करने के लिए, सीखने के लिए, तो आपको सिखाएगा अच्छे से। जैसे कौन मुझे बता रहा था, अभी एक डॉक्टर है, वो भी 2 साल पहले उसने अपना खत्म किया हो MD मास्टर्स, अभी 2 साल पहले, उसको भी आता है, सब कुछ आता है। और दूसरे डॉक्टर है जो 20 साल पहले उन्होंने कंप्लीट किया है कुछ, उनको भी आता है, दोनों को आता है, लेकिन फिर भी 20 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को ऐसी ऐसी चीजें आती है कि वो अपने अनुभव से बता सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये। अब तो डॉक्टर, आपको तो पता होगा कि इतने पुराने अनुभव बहुत काम कर जाता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक अनुभवी व्यक्ति गुरु को तत्वदर्शी माना गया है, जिसने तत्व का दर्शन किया है। सो तत्व का अर्थ होता है ज्ञान का सार, या पूर्ण ज्ञान। तत्व का अर्थ होता है फिलोसॉफी। तत्व का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। तत्व तो है, भगवान कहते हैं ना, आगे नहीं पता, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो विचित तत्वतः, चौथे अध्याय में, इसी अध्याय में आगे बताया था कि जो जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है वह व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं लेता। तो तत्व से जानने वाला व्यक्ति कौन है? तत्वदर्शी, जिसने तत्व का दर्शन किया, आध्यात्मिक गुरु, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। सो एक्सपर्ट फिजिशियन होते हैं डॉक्टर, आध्यात्मिक गुरु। वी हैव अनदर डॉक्टर आल्सो, आपके ये आयुर्वेदिक अनुभवी डॉक्टर है, ही इज आल्सो डॉक्टर। तो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट, पढ़िए।
द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट। द लॉर्ड देयरफॉर एडवाइसेस अस टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ। No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of deceptive succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in the deceptive succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. The Bhagavatam, Srimad Bhagavatam 6.3.19 says, Dharmam tu shakshat bhagavat pranitam. The path of religion is directly initiated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path. Nor by independent study of the books of knowledge can one progress in spiritual life. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master can be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant, without false prestige. Satisfaction of the spiritual, self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Unless देयर इज सबमिशन इन सर्विस इंक्वायरीज फ्रॉम द लर्नेड स्पिरिचुअल मास्टर विल नॉट बी इफेक्टिव वन मस्ट बी एबल टू पास द टेस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड वेन ही सीज द जेन्युइन डिजायर ऑफ द डिसाइपल ही ऑटोमेटिकली ब्लेसेस द डिसाइपल विद जेन्युइन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इन दिस वर्स बोथ ब्लाइंड फॉलोइंग एंड एब्सर्ड इंक्वायरीज आर कंडेम्ड Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiry. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive and is already ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiry becomes perfect.
Rupa Goswami. कहते हैं आदो गुरु पदाश्रय जो 64 जो लिम्स है भक्ति भक्ति के जो 64 अंग है वो अंग का सबसे पहला फर्स्ट जो स्टेप है वो है आदो आदो का अर्थ है बिगिनिंग विथ शुरुआत आदो गुरु पदाश्रय गुरु के आश्रय से शुरू होता है अगर आप आध्यात्मिक जीवन आरंभ करना चाहते हैं तो आपको गुरु का आश्रय लेना पड़ता है कई भक्त लोग ऐसा करते हैं कि कई साल बीत जाने के बाद भी ये सोचते कि उनको दीक्षा की आवश्यकता ही नहीं है या वो दीक्षा लेने के लिए अभी तैयार नहीं है या फिर दीक्षा के विषय में सोचते नहीं है गुरु को शरणागत नहीं है ऐसा सोचते रहते हैं लेकिन दीक्षा की आवश्यकता भगवान स्पष्ट यहाँ पर बताते हैं कि गुरु के आश्रय के बिना गुरु को शरणागत हुए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता अगर ये विधि नहीं होती तो भगवान क्यों कहते इस श्लोक में उस गुरु के शरण में जाओ तो ब्लाइंड फॉलोइंग एब्सर्ड इंक्वायरी श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि अंधा अनुकरण और निरर्थक जिज्ञासा तो इस प्रकार की दोनों चीज को प्रभुपाद ने यहाँ पर कंडेम किया है तात्पर्य में लिखा है कि दोनों को कंडेम किया अंधा अनुकरण का ये स्वामी हजारों इनके फॉलोअर इनके पास जाना चाहिए ये स्वामी के 1000 फॉलोअर्स 2000 फॉलोअर्स ये कथा करते नेपाल में जाकर के इनके पास जाकर के हजार उनके पास शरणागति लेनी चाहिए उनका शिष्य बनना चाहिए जिसको बोलते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग अंधानुकरण तो उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है सो और ये जनरली इस प्रकार के लोग मूर्ख बनाते हैं लोगों को चीटर्स एंड चीटेड सो प्रभुपाद कहते हैं कि Example there, Prabhupada. If you go to a professor and say, "Oh, if you are a professor, can you make me an MA immediately?" And he says, "Yes, why not?" Then you are a fool, and he is also a fool. Of course, so-called spiritual master is a rascal. The man who has gone to him is also a rascal. Dhruva Maharaj went to the forest and had practiced many penances and austerities. Then he saw God. Can I see God immediately without being trained up, without undergoing training? No, it's not possible. तो ये इस प्रकार के गुरु होते हैं जो जिनको पागल लोग मूर्ख लोग इनका अनुसरण करते हैं फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अ मार्केट टू बाय अ नाइफ यू नो व्हाट नाइफ इज इट मस्ट बी शार्प इंस्ट्रूमेंट उसका धार होना चाहिए यू टेस्ट इट टू सी हाउ शार्प इट So suppose you go to someone to see God, how will you test if you do not know what God is? Suppose he gives you a dog and you understand this is God. So what is your testing power? At least you must have some theoretical knowledge what God is. Prabhupada कहते हैं कि आप मार्केट में छुरी खरीदने जाते हो और आपको पता होना चाहिए कि छुरी कैसी होती है छुरी का अर्थ होता है जिसमें थोड़ा धार होता है तेज होती है और वो कोई साधन है अब इसी तरह से आप भगवान को ढूंढने जाते हो तो किसी दुकानदार के पास चले जाओ, किसी स्वामी बापू भोगी जोगी बापू के पास चले जाओ, अगर आपको एक कुत्ता दे दे गिफ्ट में, बोले ये भगवान है, तो आप उसको स्वीकार कर लो। ऊपर एग्जांपल दे रहे। सो सेम वे इफ यू हैव नॉट सीन $10 नोट एंड यू आस्क समवन दैट कैन यू गिव मी $10, यू कैन बी चीटेड, यू नो, समबडी कैन गिव पीस ऑफ पेपर एंड राइट $10 एंड गिव इट टू यू। सो इस तरह से प्रभुपाद दो तीन एग्जाम्पल दिए है यहाँ पर। और फिर प्रभुपाद दूसरा एक चीज इम्पोर्टेंट बताते हैं कि बिना सेवा के आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यू मस्ट सर्व, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि गुरु अपने मार्ग पे, मैं अपने मार्ग पे, गुरु जी आपको दे, आप गुरु हो, आपका कर्तव्य है कि आप मुझे शिक्षा दो। वायर कर लो। आई नो सम पीपल, मतलब वो गुरु है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है मुझे ज्ञान दे, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि तुम सेवा करो, वो मैं नहीं करूंगा, तो फिर गुरु क्यों देंगे तुम्हें ज्ञान? यू हैव टू बी पॉजिटिव, देन ओनली द मैसेज कैन बी ट्रांसफर्ड। आप पॉजिटिव नहीं, आप नेगेटिव रहते हो, तो गुरु क्या कर सकते हो उसमें? सो ये तरीका है आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का, कि तीन मुख्य चीजें यहाँ पर बताई गई है। यस,
कुछ कई बार ऐसा होता है कि एक या दो गुरु की इंस्ट्रक्शन या फिर किसी इंस्ट्रक्शन में वो ओवरलैप हो रही है, फिर वो दोनों
डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे
हैं, या फिर हम दोनों इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाह रहे हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, तो क्या होना चाहिए?
वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली गुरु डिफरेंट डायरेक्शन के इंस्ट्रक्शन देते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी अपनी ही समझ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, ये दो डायरेक्शन तब क्रिएट हो सकते हैं जब आपके को कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस से आप गुजर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये दो अलग अलग दिशा में मुझे आदेश दिए गए हैं। तो जब भी कोई प्रश्न होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट पर्सन टू सॉल्व योर क्वेश्चन इज द पर्सन हु इज गिवन यू द इंस्ट्रक्शन। जिस व्यक्ति ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है वही व्यक्ति सबसे उत्तम आंसर आपको दे सकते हैं। अगर जैसे अपने डिवोटीज को हम हमेशा कहते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास आध्यात्मिक गुरु को संपर्क करने के निरंतर आपके पास नहीं होते, तो उस समय आपके पास वरिष्ठ गुरु बंधु, वरिष्ठ वैष्णव या गुरु के गुरु भाई या इस प्रकार के जो वरिष्ठ होते हैं हमसे आगे बढ़े हुए, उनके सामने हमारे मन को खोल के बात करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात को ढंग से समझेंगे और आपके गुरु की इच्छा को समझ पाएंगे, और आपके गुरु ने जो कहा है वही चीज आपको बताएंगे उनके दृष्टिकोण से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु के दृष्टिकोण से आपको बताना चाहिए, अपने दृष्टिकोण से नहीं। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, आप समझे ना। समझो कि एक्स गुरु है आपके, एक दिवो, एक यू नो कोई महाराज है आपके गुरु जी, और उन्होंने आपको क्या कहा, आपको उसको ठीक से समझना है। तो आप किसी डिवोटी के पास गए तो वो डिवोटी अपने विचार से नहीं बताएगा कुछ, वो डिवोटी आपके गुरु जी के दृष्टिकोण से आपको बताएगा, वही शिक्षा गुरु हो सकता है। सो ही कैन, सो दैट्स बेस्ट थिंग टू आस्क इधर द पर्सन हु इज गिवन इंस्ट्रक्शन, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेस हिम, यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम इधर ऑफ हिज डिसाइपल्स होम यू हैव फेथ, और एनी ऑफ योर नियर बाय सीनियर डिवोटी हु कैन हेल्प ऑन दैट। बट आइडियली देयर इज ओनली वन गोल, कृष्ण भक्ति, सो देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट डायरेक्शन। सो आगे बताया गया है कि क्या परिणाम आता है एक ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात। पढ़िए।
જયારે તે રીતે આ તે આ રીતે સત્યને જાણીને જાણી લીધું હશે ત્યારે તું આવા મોહમાં ફરી કદી પડીશ નહીં, કારણ કે તું જાણીશ કે બધા જીવો મારા જ અંશ છે અને તેઓ મારા જ છે।
ભગવાન યહાં પર ક્યા બતાતે હૈ, એ જ્ઞાન જબ તમારા આધ્યાત્મિક ગુરુ દેંગે ના તમે, જે પ્રભુપાદ કે ગ્રંથો કો આપ પઢોગે તો એ જ્ઞાન આપકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ। आप सोचते हैं कि क्या होगा, प्रभुपाद का बुक पड़ेगा कोई तो, ये ग्रंथों में इतना शक्ति है कि एक पेज भी अगर कोई ढंग से पढ़ ले, एक पैराग्राफ या एक लाइन भी ढंग से पढ़ ले तो उसका पूरा जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि यू विल नेवर फॉल अगेन इन टू सच रिलीजन, आपको ये मोह नहीं होगा। विशेष करके अर्जुन तुम्हें जो मोह हुआ था ना, क्या मोह हुआ था, गांडीव रख लिया था, भीष्म द्रोण को मारना तैयार नहीं थे, तो इस प्रकार का मोह तुम्हें फिर से नहीं होगा। और फिर तुम्हें तुम समझ पाओगे कि चाहे कोई भी जीव हो, ये भीष्म द्रोण दुर्योधन ये सब नहीं, कोई भी जीव है, कुत्ती कुत्ता बिल्ली पशु गाय गधा जो भी जीव है, जितने भी जीव है, मनुष्य देवता, ये सभी अलग अलग प्रकार के शरीरधारी आत्माएं हैं और ये सब मेरे अंश है। इन अदर वर्ड्स दे आर माइन, ये सब मेरे अंश है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया। सो अर्जुन को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके सगे संबंधी मर जाएंगे। अब कैसे मरेंगे भाई, मेरे अंश है, वो मरेंगे कैसे, मैं शाश्वत हूं तो मेरे अंश भी शाश्वत है। प्रभुपाद कहते हैं द रिजल्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइज सोल और वन हु नोज थिंग्स एज दे आर इज लर्निंग दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्ण। द सेंस ऑफ एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम कृष्ण इज कॉल्ड माया। कृष्ण से स्वतंत्र अस्तित्व रखना टोटली उसे माया कहते हैं, जो नहीं है वो उसको माया कहते हैं। माया का काम क्या है, आपको भगवान से विमुख कर देता है, इल्यूजन मोह। पार्ट एंड पार्सल का अर्थ क्या होता है, पार्ट का अर्थ होता है अंश, लेकिन कई बार कुछ लोग बोलते हैं पार्ट तो चलो समझ गए, पार्ट पार्सल क्या होता है, पार्ट एंड पार्सल प्रभुपाद यूज करते ना, पार्ट एंड पार्सल व्हाट डज इट मीन। तो पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है कि पार्ट तो अंश है भगवान का, जैसे नदी है या समुन्द्र है, उसमें से एक बिंदु ले लिया तो उसका पार्ट हुआ, लेकिन वो समुन्द्र नहीं माना जाता है, उसका अपना अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन पार्सल का अर्थ होता है कि वो सेपरेट यूनिट के रूप में रहता है, पार्सल इज लाइक दैट, सेपरेट यूनिट, इंडिविजुअल सेपरेट यूनिट बट इटर्नल, शाश्वत के शाश्वत रूप से रहता है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। सो जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी। मार्जिनल का अर्थ क्या होता है, तटस्थ का अर्थ कि उस को किसी भी एक शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, किसी भी एक शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, ये उसका प्रॉब्लम। तीन शक्ति है मुख्य रूप से, एक है बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और अंतरंग शक्ति। तो बहिरंग का अर्थ होता है जो माया, भगवान आप भगवान को भुला दे, जो चीज आपको अज्ञान में डाले, जिस चीज के मोह से, माया के मोह से व्यक्ति अपने आप को स्वामी मानने लगता है, भोक्ता मानने लगता है, भगवान से स्वतंत्र होकर के सुख भोगने को लगता है। आप सोचिए कि संसार में आज जिस तरह से कितना बड़ा संसार है, कितना हजारों लाखों करोड़ों लोग, पृथ्वी की बात कर लो केवल, पृथ्वी में कितने करोड़ों लोग हैं, है ना भाई, जितने भी लोग हैं सब लोग अपना अपना, जैसे कोई मूवी का कोई अपने आप को खुद को हीरो मानता है मूवी का, वो एक मूवी चल रही है लाइफ की और उसमें वो ही इज हिमसेल्फ इज अ हीरो ऑफ दैट मूवी, और बाकी सब उनके अदर कैरेक्टर प्लेयर है अदर सब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को हीरो मानता है, तो क्लैशिंग होने वाली है। हर एक व्यक्ति भोक्ता मानना चाहता है, हर एक व्यक्ति इज द, एवरीवन थिंक्स इज द बेस्ट, तो क्लैशिंग होने वाली है। हर एक व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र होकर के शरीर का भोग करना चाहता है, हर एक व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र होकर के अलग अलग प्रकार के स्वामी बनना चाहता है। मैं अच्छे गाड़ी में घूमूंगा, सुंदर स्त्री से पुरुष से शादी करूंगा, या धन प्राप्त करूंगा, भोग प्राप्त करूंगा, या फिर समाज में मेरी नाम प्रतिष्ठा होगी, विश्व में सबसे अधिक धनवान व्यक्ति मुझे माना जाएगा, जब मुझे इच्छा होगी तब मैं गोल्फ खेलने जाऊंगा, तो इस जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय, दिस इज बहिरंग शक्ति। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू बी हैप्पी इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर के भगवान से सुखी होने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से दुनिया भर की चीजों से वो मोहित होते हैं। यह बहिरंगा शक्ति। और अंतरंगा शक्ति क्या है? जिसमें आप अज्ञान से मुक्त होते हैं, सब प्रकार के ज्ञान से आप जानते हो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो और आप भगवान का दास हो, भगवान के साथ संबंधित हो। और तटस्थ शक्ति क्या होता है? कि हम खुद जीव, तट का अर्थ होता है किनारा, तट, और स्थ का अर्थ होता है स्थिर, जो किसी एक किनारे पर रह सकता है, बीच में नहीं रह सकता हो। जैसे एक साइड है अंतरंग शक्ति, दूसरी साइड है बहिरंग शक्ति, दोनों के किनारे है, तो किसी एक में या तो इधर रहेगा या तो उधर रहेगा, ये समस्या है। इसलिए किसी एक का शेल्टर लेना पड़ता है उसको। ये हो सकता है कि प्रोपोर्शनेटली हो सका, आपने 10% अंतरंग शक्ति का लिया, 90% बहिरंग शक्ति, 20% अंतरंग शक्ति, 80% बहिरंग शक्ति, तो ये धीरे 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 जैसे भक्ति की प्रोसेस ही इस तरह से काम करती है। भक्ति में आप जब जुड़ते हो तो शुरू शुरू में आपको हरि नाम जप करना इतना अच्छा नहीं लगता, इतना रुचिकर नहीं लगता, क्या करने बैठ गए, किसने क्या पकड़ा दिया हाथ में मेरे, हरे कृष्ण मंत्र जप करता हूँ, अरे छुपा छुपा के करना पड़ता है, कोई देखेगा क्या सोचेगा मेरे विषय में, बोले तू मारा का जप करता है, साधु बन गया इतनी छोटी उम्र में। तो सारा बात, लेकिन फिर धीरे 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 आप जब करते हो तो आपको पता पड़ता है कि हाँ ये तो बहुत पावरफुल है, इससे तो मुझे मन में शांति प्राप्त होती है, मेरा जीवन शुद्ध होने लगा ये जब करने से, तो वो अंतरंग शक्ति का प्रभाव बढ़ता जाता है। और फिर वो बहिरंग शक्ति का जो प्रभाव है वो कम होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई मूवीज या टीवी सीरियल्स देखने का शौक होता था पहले, या फिर आपको रेस्टोरेंट्स में खाने का शौक होता था पहले, तो ये सारे तो अब इस पे आकर्षण नहीं है। कैसे गया ये आकर्षण? न्यूज़पेपर में आया था ऐसा कि आज के बाद रेस्टोरेंट में जो खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा, नहीं ऐसा भी तो नहीं था। कैसे गया ये आकर्षण? शायद आपको पता भी नहीं चला कि आकर्षण गया कैसे। ये है अंतरंग शक्ति का प्रभाव, भगवान की शक्ति का प्रभाव। तो तटस्थ का अर्थ होता है किसी एक शक्ति में स्थिर होना, और ये ज्ञान आपको कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं सिखा सकता, कोई प्रोफेसर नहीं सिखा सकता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, ये ज्ञान आपको तत्वदर्शी सिखा सकते हैं। ये ज्ञान आपको परंपरा सिस्टम से ही समझ सकते हो। अगर आप परम इज वेरी इम्पोर्टेंट, हो सकता है कोई व्यक्ति धर्म का संप्रदाय खोल के बैठा है, हो सकता है कोई बापू भोगी जोगी हो सकता है, हो सकता है किसी के वचन बहुत अच्छे अच्छे हो सकता है कि उसके आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल शास्त्र पर आधारित हो, कोई व्यक्ति आपको मिला वो आपको बता रहा है, लेकिन जब तक उसका संबंध भगवान के साथ परंपरा के माध्यम से नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, तब तक वो व्यक्ति आपके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता। समझे, मैं आपको कितना भी अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता हूं, मैं बड़ा बड़ा योगी भोगी बापा बन गया हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अच्छा ज्ञान देता हूं और आपको मेरी बात अच्छी भी लगे, लेकिन अगर मैं परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं हूं तो मेरे आध्यात्मिक ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए हमें परंपरा से जुड़ना चाहिए। सो आगे वाले श्लोक में बताया गया है कि ये ज्ञान प्राप्त करने से कितना बड़ा चमत्कार होता है। पढ़िए।
यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो गए।
हाँ, यहाँ पर ज्ञान को नौका का उपमा दिया गया है। ज्ञान रूपी नौका में कोई व्यक्ति बैठ जाता है, इफ यू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, सभी पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी अगर माना जाए, जगह मधाई जैसा वैदिक शास्त्र में पाप शब्द का जो रूट है वो है भोग करना पाप, और भोग करने में भी सबसे अधिक होता है सेक्स डिजायर। ये हर एक व्यक्ति के डिप रूटेड है, क्या बोलते हैं उसको, गहराई में फंसा हुआ है ये। इसकी इच्छा है हर एक व्यक्ति को अधम से अधम कृत्य करने के लिए प्रेरित करती है। वो हमने चर्चा किया था ना तीसरे अध्याय में, पाप करना नहीं चाहता है फिर भी क्यों पाप करता है, तो फिर भगवान ने कहा था काम यही तुम्हारा शत्रु है, इसको कितना भी पूरा करो खत्म ही नहीं होगा ये, और ये बड़ा पापी है। तो सभी पापियों में जो सबसे अधिक पापी है, अगर मान लो भगवान कहते हैं, तो व्यक्ति अगर ज्ञान की आध्यात्मिक ज्ञान के नौका में बैठ गया तो दुनिया भर की संसार भर की समुन्द्र भर के जो कष्ट है उसको भी पार कर सकता है, दुखों के सागर को पार कर सकता है। कौन व्यक्ति? जिसने आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा लिया हो, अर्थात उसने बहुत सारे पूर्व जन्म बहुत पाप कर्म किए हो सकते हैं, लेकिन आज उसने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, अगर उसने भगवान की शरण लेना शुरू किया, उसने अगर वो हरि नाम जप करना शुरू किया, तो पूरे दुखों का पूरे सागर को लांग सकता है इस आध्यात्मिक ज्ञान से। इसलिए यहाँ पर अपिचेत शब्द का उपयोग हुआ है। अपिचेत, अपिचेत शब्द का उपयोग किस तरह से है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कोई प्रश्न पूछ सकता है ना, ऐसा ऐसा किसी के मन में आ सकता है कि एक मिनट, आप एक इस श्लोक को क्या कहा गया है कि सभी पापियों में सबसे ज्यादा पापी अगर तुम मानते हो, इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप कर रहा है तो उसका हृदय शुद्ध कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति पाप में लगा हुआ है तो उसका हृदय शुद्ध कैसे हो सकता है? और हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? पापी है तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर आध्यात्मिक ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है तो अच्छी तरह से कार्य कैसे कर पाएगा? ये सब प्रश्न पूछे। इन अदर वर्ड्स, कोई व्यक्ति पाप में जुड़ा हुआ है और भगवद गीता भी पढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? कहने का तात्पर्य ये है, ये कैसे हो सकता है? तो फिर भगवान आगे कहते हैं उसी आध्यात्मिक ज्ञान के इफेक्ट को पढ़िए।
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है।
क्या होता है, ये ज्ञान की जो अग्नि है वो सब प्रकार के कर्म को जला देती है, प्रारब्ध को छोड़ करके। कर्मों के परिणाम अलग अलग होते हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध बीजम कूटम और फिर प्रारब्ध, अलग अलग स्टेजेस है कर्मों के। पहला स्टेज क्या है, अप्रारब्ध, मीन्स कर्म आपने कर लिए लेकिन इसका परिणाम अभी पका नहीं है, अभी बहुत देर है। आज इस जन्म में आपने किसी की टांग तोड़ दी तो हो सकता है कि आप पुलिस ने पकड़ा भी नहीं और आप निकल गए बिना किसी को बताए और समहाउ कुछ नहीं हुआ, तो वो आपका अपराध के रूप में फॉर एग्जांपल पड़ा रहेगा। बोले अगले लाइफ में तुम्हारी बारी है, नेक्स्ट लाइफ में तो मैं जैसे मांस तो गाय को मार देता है कोई, तो वो ऐसा सोच सकता है कि गाय को मार दे तो क्या बड़ा पाप कर दिया, उसको शायद पुलिस ना भी पकड़े, सरकार के नियम से बच भी जाए, लेकिन यमराज के नियम से तो नहीं बच सकता है वो व्यक्ति। तो इस जन्म में उसने मारा है गाय को, तो अगले जन्म में उसकी हाल बुरी हो जाएगी, उसकी दशा बुरी हो जाएगी, राइट। तो इसको बोलते हैं अप्रारब्ध, अभी पके नहीं है, पकेंगे कल जाके, पकेंगे अगले जन्म में, पकेंगे 10 जन्म के बाद पकेंगे। फिर दूसरा होता है बीजम। बीजम में क्या होता है कि एक बीज के रूप में आपके हृदय में बैठ जाता है पाप का परिणाम, इसमें आप इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन। जैसे चोरी की लास्ट जन्म में मैं चोर बनने का इच्छा किया था पूर्व जन्म में, तभी इस जन्म में मुझे पाप का परिणाम क्या आएगा कि मैं बचपन छोटी उम्र में ही चोरी करना का वृत्ति आएगा, झूठ बोलने की वृत्ति, गलत बोलेगा, है ना। कुछ बच्चे होते ही ऐसे जन्मते ही इतना झूठ बोलते रहते, आप अंदाजा लगा सकते हो कि बड़ा होकर क्या करेगा, अभी इतना झूठ बोल रहा है तो, राइट, कुछ भी बोल, कुछ भी कर सकता है फिर वो। तो बीजम वो सीर के रूप में रहता है, वो कब फूटेगा, आज नहीं फूटा है कल फूटेगा, फिर धीरे धीरे सिंफुल प्रोक्लिविटी इच्छा। जैसे अभी क्या होगा, स्कूल में जाएगा वो बच्चा, किसी का पेंसिल चुरा लेगा, किसी का लंच बॉक्स चुरा लेगा, किसी की नोटबुक चुरा लेगा, लेकिन ये छोटी सी बात है उसके लिए। फिर वो बड़ा हो जाएगा, कूटम, कूटम के बाद आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध में क्या होता है कि वो सही में चोर बन जाता है, ये डिफरेंट स्टेजेस है जिसकी चर्चा भक्ति सामर्थ में करेंगे ढंग से। तो अलग अलग रहते हैं, अज्ञान, पहले कर्म, उसका अप्रारब्ध, फिर बीज, फिर कूट और फिर प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स अभी जो भुगत रहे हम, वो जैसे वो क्या बोलते हैं इसको, किडनी में स्टोन होना तो ये प्रारब्ध है, मीन्स वो अभी तो इतने सालों तक का बचा हुआ था कर्म, वो प्रारब्ध आ गया सामने, और स्टोन भी एक साल पड़ा रहा अंदर, तो ये प्रारब्ध कर्म है। फिर कोई व्यक्ति कोर्ट केसेस में पड़ा रहता है, कोई व्यक्ति को आप होते, कुछ लोग उसको हमेशा कोर्ट के पास जाते, कुछ लोग को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, हर 2 महीने में एक बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, कुछ लोग को हमेशा डॉक्टर के पास जाना, कुछ ऐसी बीमारी लग जाती है 1-2 महीने एक बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, राइट। तो ये सब है प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान में हम जिसको भुगत रहे हैं। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर जन्म लिया है, अच्छा दिखने में है, कोई व्यक्ति बदसूरत है, उसको देखने को कोई तो देखना भी पसंद नहीं करता है, तो ये प्रारब्ध है। कोई बुद्धिशाली पैदा हुआ है, कोई मूर्ख है, उसको कितना भी समझाओ भूल ही जाता है सब कुछ, तो कुछ ये सब प्रारब्ध है हमारे। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रारब्ध को छोड़ करके आध्यात्मिक ज्ञान सब प्रकार के आगे के कर्म को भस्मसात कर सकता है। भक्ति जो है, भक्ति तो है, भक्ति का जो प्रभाव है वो तो प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकता है, सबको नष्ट कर सकता है, कर्माणि निर्दहति पूर्ण रूप से। इसलिए कहा गया है कि जैसे पंखा है, तो पंखा अगर फुल स्पीड में अगर घूम रहा हो फैन, तो उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, वो पंखा बंद तो हो गया लेकिन उसको टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत तेजी से घूम रहा था तो स्टेडी नहीं हुआ। इस तरह से आपने ज्ञान का स्वीकार कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, वे आप समझे ना, पूर्व पहले वाले श्लोक में क्या लिखा था, कोई पापियों में सबसे पापी है लेकिन वो ज्ञान की शरण में आया है तो उसके दुख नष्ट हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया है कि पंखा उसका बड़ा तेज चल रहा था लेकिन उसने स्विच ऑफ कर दिया, अर्थात तो उसने पाप करना बंद कर दिया अभी, लेकिन जो पहले का पाप किया हुआ था वो तो दिखेगा आपको, है ना, उसका तो परिणाम। इसलिए वो धीरे 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 पंखा धीरे 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 बंद होगा। इसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु माला का जप करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, प्रभु माला का जप करते हैं लेकिन मुझे ये समस्या क्यों आई, प्रभु आप तो इतना अच्छा सेवा करते हो, मुझे तो हजार लोग मिले अभी तक, कई देश विदेश में फॉरेन कंट्रीज में भी मुझे लोग बोले यही चीज, आप इतना सेवा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर आपको ऐसे दुख क्यों आते। मैं कहां दुख आते हैं, कौन से दुख आते, बोले नहीं आपको ये सबसे इस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने कहा कि जो प्रारब्ध है उसको आप कैसे नष्ट कर सकते हो, उसको कुछ नहीं कर सकते, आपके पास एक ही शक्ति है, यू हैव ओनली वन चॉइस, डोंट डू फर्दर, अब से पाप मत करो, आगे अब पाप मत करना, दैसे। तो पंखा धीरे धीरे बंद होगा अपने स्पीड पर, और कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भक्तों को क्यों भुगतना पड़ता है, जैसे हिजोलिनेस जयपता का स्वामी है, हिजोलिनेस राधा गोविंद महाराज है ना, उन लोग की शरीर की जो स्थिति है वो बड़ी कष्टदायक है, लेकिन हालांकि जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, जयपता का स्वामी जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी प्रभुपाद के चरणों में रख दी है और इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं की है उन्होंने लाइफ में प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, बहुत स्पेशल पर्सन है भगवान प्रभुपाद, तो यहां तक बोले हैं उनके विषय में कि वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। तो अगर इस तरह इतने महान अगर कोई भक्त है, आचार्य है, कोई गुरु है, तो उनको इस प्रकार की क्यों स्थिति का सामना करना पड़ा, ऐसी स्थिति। राधा गोविंद मां इतने अच्छे भागवत कथाकार है और इतने जितना कितना गहराई से भागवत को जानते हैं, तो उनको क्यों ऐसा सामना करना पड़ा। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, तो भक्तों को क्यों ये किया जाता है, ताकि ऐसे तो कई रीजन है लेकिन एक रीजन ये है कि वो कृष्ण भक्ति में लगे रहे, उसको छोड़े नहीं, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है कि कुछ प्रारब्ध बाकी छोड़ा जाता है भगवान के द्वारा ताकि आप प्रचार कर सको, अगर सारे कर्म ले लिए जाए, प्रारब्ध भी ले लिया जाए, तो आप तो मुक्तात्मा बन गए, आपको शिक्षा भगवान के धाम ले जा सकता है, लेकिन भगवान जानबूझ के कुछ छोड़ देते हैं कि इसका सब खत्म हो गया है, इसको 10-20 साल दे दो, इसको 10-20 साल जीने को दे दो, 25-30-40-50 साल दे दो जीने को, उतना पाप नष्ट मत करना, तो 40-50 बचेगा, 40-50 साल उतना पाप छोड़ दो। क्यों छोड़ दो 40-50 साल, बोले 50 साल के बाद तो मेरे पास आने ही वाला है, मुझे वापस लेने का ही है उसको। लेकिन वो 50 साल में कुछ प्रचार बचार तो करे, कुछ सेवा तो करे, खाली खाली क्या आएगा मेरे पास। सेवा करके आए ना, दूसरे 10 लोग को भक्ति में जोड़ के आए ना। तो ये उद्देश्य से भगवान कुछ प्रारब्ध छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी भगवान को कंप्लेन मत करो कि मेरे साथ क्यों ऐसा। अरे तुम्हारे साथ वो पूरा सिस्टम से प्लान बना करके दिया है आपको, डोंट वरी। भगवान ने कुछ बहुत योजना से आपको ये दिया हुआ है, तो इसको आप फॉलो करो। सो फिर आध्यात्मिक ज्ञान का आगे वाले श्लोक में भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत ही ग्लोरिफिकेशन आगे के श्लोक में भी किए। 38 में पढ़िए,
इस संसार में तत्व ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है।
यस, यहाँ पर यथा समय शब्द का भी उपयोग हुआ है। यथा समय काले न, इसका अर्थ क्या होता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आज आपने भगवद गीता खोला और कल आप महात्मा बन गए। आप कहोगे प्रभु कल ही मैंने भगवद गीता पढ़ाया, इसका परिणाम आज दिखना चाहिए, आज क्यों नहीं हुआ, मुझे तो कोई आसक्ति गई नहीं। तो आप तो कह रहे थे ना ये नहीं, ये ज्ञान सदृशम पवित्रम, इससे अच्छा पवित्र और कुछ है नहीं। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर कहा गया यथा समय। यथा समय का अर्थ होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपकी अज्ञानता नष्ट होगी, एकदम से नहीं होगी। इसलिए कोई व्यक्ति ये सोचता है प्री मैच्योर इनाउंसिएशन, अभी हृदय में आसक्ति गई नहीं है और आपने कर्मों का त्याग कर दिया, अभी हृदय स्वच्छ हुआ नहीं है और आपने संन्यास ले लिया आपने, तो फिर क्या परिणाम आता है? व्यक्ति गिर जाता है। यथा समय, यथा समय का अर्थ होता है काले ना, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। फिर वो धीरे 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 समझ सकता है ग्रेजुअली कि आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 साल 5 साल 10 साल से कृष्ण भक्ति में जुड़े, तो जिस अवस्था को आज आप प्राप्त किए हैं वो पहले दिन नहीं आया था ये अवस्था, धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपने इसको आत्मसात करते गए, जैसे समझते गए, अनुभव करते गए, फिर आप उसकी महत्ता को समझ पाए, फिर आप उसकी असर से आप अपने आप को परिचित कर पाए, आपको पता पड़ा कि इसका क्या महिमा है। तो आज ये स्थिति है कि आप कुछ अलग अवस्था पे हो, और ये 10 साल के पश्चात और कोई स्थिति होगी, है ना। 10 साल के पश्चात आपका आध्यात्मिक विकास और आगे आया, तो आप कुछ और विचार के, राइट। जैसे मैं 20 साल पहले, मुझे कुछ और ही सोचने वाला व्यक्ति था, 20 साल, आज 20 साल के पश्चात मेरी सोच की दिशा बदल गई। हो सकता है आने वाले कुछ समय के पश्चात मुझे और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो यहाँ से कहने का तात्पर्य कि ग्रेजुअली वो उसके हृदय में निष्काम कर्मयोग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। निष्काम कर्मयोग का अर्थ होता है फल से मुक्त होकर के कर्म करना। प्रभुपाद कहते हैं एक लेक्चर में कि इस ज्ञान को फैलाने के लिए हमें हजारों हजारों आध्यात्मिक गुरुओं की आवश्यकता है, इसलिए मैंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की है ताकि आप सब लोग इसको पढ़ो, इसको समझो और इसकी महिमा को औरों तक फैलाओ, औरों को समझाओ, ताकि दूसरे लोग जो है वो सभी लोग इसका लाभ उठा सके। ये उद्देश्य से मैंने इस्कॉन की स्थापना की, ऐसा प्रभुपाद बताए। फिर भगवान यहाँ आगे बताते हैं ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आगे क्या कहते हैं श्रद्धा के विषय में भगवान कहते हैं, पढ़िए।
जो श्रद्धालु उसी ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है।
यस, श्रद्धालु व्यक्ति ये प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और इंद्रियों को विजय प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति श्रद्धावान होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और इंद्रियों को वश में किया होना चाहिए। ये तीन चीज उसके पास होनी चाहिए तब वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई व्यक्ति छोटी चीज को भी प्राप्त नहीं कर सकता है तो बड़ी चीज क्या प्राप्त करेगा, वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा बिना श्रद्धा के। फॉर एग्जाम्पल, तो पर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मी सी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहते हैं कि आपको इतना इतना फॉलो करना है और डॉक्टर के पास जाकर आप डॉक्टर में कोई श्रद्धा ही नहीं है तो आप क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी गया था हॉस्पिटल में, एडमिट था, तो कैसे था, सरेंडर, टोटली सरेंडर। डॉक्टर कहेंगे हाथ ऐसे रखो, हाथ ऐसे रखो, आपको यहाँ इतना ही खाना है, ये दवाई इस टाइम पे लेनी है, ठीक है ले लेंगे, ये करना है वो करना है, जितना बताएंगे ये करना है वो, फुल्ली सरेंडर, यही करना है वही करना है, मुंह खोलो हा करो, फुल फेथ। डॉक्टर ने कहा देखो ये इस तरह से रहोगे तो आपका दो दिन में पेन खत्म हो जाएगा और ये फॉलो करो। तो मैं अगर कह नहीं, पहले आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ कैसे कैसे दो दिन में खत्म होगा पेन, दैट वॉन्ट वर्क, यू मस्ट हैव फेथ, श्रद्धा होना चाहिए। जैसे आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि बेटा तू 16 माला का जप कर, 4 नियम का पालन कर और भगवान प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो तो तुम्हारा लाइफ परिवर्तन होएगा। नहीं कैसे होगा, यू मस्ट हैव फेथ। बिना श्रद्धा के एक भक्ति आलोक करके ग्रंथ है जिसमें कहा गया है शुरुआत में निष्ठा नहीं होती हमारी क्योंकि अनर्था प्रचुर होते हैं, बहुत सारे अपराध पाप में इच्छाएं बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे आप भक्ति में जुड़ते उत्साह के साथ धीरे 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 आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, इंद्रिय को निग्रह करते हो आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। श्रद्धा अवश्य ही महत्वपूर्ण है लेकिन श्रद्धा का जो प्राण है वह है उत्साह। उत्साह पूर्वक की सेवा करने से श्रद्धा बढ़ती है। एंथुजियाज्म इज द लाइफ ऑफ फेथ। अगर आप श्रद्धा चाहते हो तो उत्साह से करो कार्य। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉर्निंग साधना करते हो तो मॉर्निंग में 16 माला का जप करना होता है, मंगला आरती करना, गुरु पूजा इत्यादि फॉर एग्जाम्पल, तो मॉर्निंग साधना में आपको उत्साह रखना चाहिए। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि अभी पहले शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था 16 माला करना ये करना, धीरे 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 उत्साह कमजोर होता जाता है, धीरे धीरे कमजोर है, क्या किया जाए। तो क्या उत्तर देना चाहिए, क्या उत्तर इसका है कि आप उस कार्य में मन से या नहीं मन से लेकिन लगे रहो, धीरे 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 आपका मन उसमें जुड़ता जाएगा और आपका उत्साह बढ़ता जाएगा। जैसे उत्साह बढ़ेगा फिर उस कार्य में श्रद्धा होगी आपको कि इस कार्य को करने से ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। तो उत्साह जो है वो श्रद्धा की जननी है। सिद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समतेन्द्रिय संयतेन्द्रिय Prabhupada also gave this example of physician. We have to control the senses. We are here in material existence because we want to satisfy the senses. That's our problem. This faith of spiritual aspirant can be enhanced when we agree at the same time. Sanyatendriya. Don't do this. Charyam. Don't smoke. Don't gamble. Bataya. Don't do this. Do nahi karna hai. Sanyatendriya. Lekin, जो श्रद्धावान नहीं होते उसकी तीन श्रेणियां है वो पढ़िए आगे।
किंतु जो अभिमानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं वे प्रगत भावना नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है।
पहले है श्रद्धावान लभते ज्ञानम पर तत्पर संयतेन्द्रिय श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है लभते ज्ञान। और इसके फॉलोइंग श्लोक में कहा गया है अश्रद्धान एंड संशयात्मा तीन है अज्ञ अश्रद्धान और संशय ये तीन प्रकार के लोग जो है उसका नाश हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये तीन वास्तव में कौन है तीन प्रकार के लोग बताए हैं जो लोग निष्फल हो जाते हैं। तो पहला है अज्ञ मूर्ख इग्नोरेंट कुछ नहीं पता उसको जड़ बुद्धि है कुछ आता नहीं उसको मूर्ख एक नंबर का अज्ञ। उस मूर्ख व्यक्ति गधे की तरह काम करता है लेकिन उसको कुछ आता नहीं। उसके लाभ में थोड़ा बहुत भौतिक चपल सुख मिलता है ना कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह उसको मिल जाता है। तो एक होता है अज्ञ मूर्ख उसको कुछ नहीं आता तो वो एक व्यक्ति वो है इग्नोरेंट। फिर दूसरा है अश्रद्धा धाना का अर्थ होता है फेथलेस श्रद्धा नहीं है उसको। वो व्यक्ति क्या करता है जनरली उसका कैटेगरी आकर देखो तो कैसा है एक शास्त्र खोलता है फिर उसको पढ़ता है इसमें मजा नहीं है बंद कर बाजू में दूसरा शास्त्र खोलता है नहीं ये संप्रदाय में जाता है फिर हाँ बताइए आपका तत्व ज्ञान क्या है वो लेक्चर सुनता है इसमें कोई मजा नहीं। दूसरी जगह जाता है वो सुनता है अश्रद्धा उसको श्रद्धा नहीं है फेथ नहीं है सही चीज के ऊपर फेथ नहीं है वो चेंज करता रहता है वो डिसएग्रीमेंट होती है हर चीज में ना मैं इतना ये इसको मैं नहीं मान सकता और क्यों मान तुम अथॉरिटी हो ही नहीं तो तुम्हें मानना नहीं मानना क्या है अथॉरिटी का अर्थ होता है शास्त्र और अथॉरिटी कहती है कि यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर स्पिरिट सो मैं नहीं मानता तो व्हाट डज इट मीन यू डोंट नो सो दैट इज अशुद्धधानस उसको श्रद्धा नहीं फेथ नहीं है उसको। भगवान बताते वो सारी चीज बात सही है लेकिन वो ऐसा क्यों कहता कि केवल मुझ में ही मन लगाओ ये तो ठीक नहीं है जिसको जहां मन लगाना है ना क्या उसमें क्या है अगर उसको देख गणपति अच्छा लगता है तो गणपति के पास है उसको शंकर अच्छा लगता है शंकर के पास है भगवान ऐसा क्यों कहते हैं सर्वधर्म परित्यज माम एकम, ये गलत है। बाकी सब भगवत गीता बहुत अच्छा है, दूसरा अध्याय अच्छा है, तीसरा अध्याय अच्छा है, नौवा अध्याय राज विद्या राज गोयम, पूरी सभी विद्याओं का राजा है। बस एक चीज ठीक नहीं है, क्या ये कृष्णा के वगैरह मेरी शरण में हो, ये ठीक नहीं है। सबके शरण में जा सकते, अशुद्ध धानस्य इसमें श्रद्धा नहीं है उसको, यह अशुद्ध धानस्य। और संशय आत्मा, संशय आत्मा का अर्थ है डाउटर, शंका करने वाला। शंका और अशुद्ध दान में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? संशय आत्मा में क्या होता है कि उसको लगता है कि ये मेरे केस में ये काफी नहीं है, मेरे केस में इसका फायदा नहीं हो सकता है। मीन्स हो सकता है कृष्ण बहुत शक्तिशाली है लेकिन मेरा उद्धार नहीं कर सकता है। हाँ चैतन्य महावर बहुत पवित्र है, मैं उनसे भी ज्यादा पापी हूँ, मेरे पाप की शक्ति उनसे भी। मैंने एक बार बताया था आपको इस चीज को, पाप का अहंकार। तो संशय आत्मा, मेरे केस में भक्ति, एक व्यक्ति आया था मेरे, एक बहुत पहले की बात, 8-10 साल पहले की बात, मुझे बोला कि प्रभु भक्ति बहुत अच्छा है, यही एक विधि है भगवान बताते हैं, तो इससे तो बड़ा ऑथोरिटी और क्या हो सकता है। ये सब कुछ सही है लेकिन मेरे केस में ये नहीं हो सकता है, मेरे केस में नहीं हो सकता, मैं थोड़ा अलग प्रकार का आदमी हूँ, तो मेरे केस के लिए शायद और कोई पद्धति होनी चाहिए, और कोई प्रोसेस होगी, ये भक्तियों की प्रोसेस मेरे काम में नहीं आती है ऐसे। वो संशय आत्मा विनश्यति, तो यहाँ पर संशय वाला जो होता है उसको थोड़ा बहुत श्रद्धा होता है कि ये सही है, अच्छा है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, वो सुखी नहीं हो सकता है, ना इस संसार में लोक में सुखी होता है, ना परलोक में सुखी हो सकता है, उसका विनाश हो जाता है। सो आपसे अज्ञ अशुद्ध धान संशय आत्मा विनश्यति, और कृष्ण आगे किस तरह से ये संशय को किस तरह से नष्ट करना ये बताते हैं। पढ़िए,
जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय तृप्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्म प्रायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता।
इस तरह से जो व्यक्ति ज्ञान को कर्म में लगाता है, अर्थात ज्ञान का उपयोग करके कर्म करता है, वो व्यक्ति बंधन में फंसता नहीं, वो अपने सारे कर्मों के फल को उसके आसक्ति से दूर हो जाता है, वो आत्मा में स्थिर हो सकता है, वो समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कर्म करता है, इसलिए उसको किसी प्रकार के कर्मों का परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भक्ति योग में जुड़ते हो तो आपका आप कर्म करते हो, विद्यार्थी हो तो पढ़ते हो, जॉब करते हो तो आप अपने धन कमाते हो, वो सब करते हो, लेकिन आप ये जानते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और सारे कर्मों के अंतिम स्वामी भगवान है और उनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे कर्म करना चाहिए। ये सोच करके जो व्यक्ति कर्म करता है वो व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता, उसको बंधन नहीं लगता, फिर रिएक्शन नहीं आता है, तो धीरे धीरे वो फ्रूट से मुक्त हो जाता है, कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए अंत में भगवान इस श्लोक के अंत, चैप्टर के अंत में फाइनल वर्स जो है, अर्जुन को ज्ञान युक्त होकर के कर्म करने को कहते हैं। पढ़िए अंतिम श्लोक।
तथा तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो।
पहले क्या कहा था, मैं नहीं करना चाहता। एक बीच में एक श्लोक है जिसमें अर्जुन ने कहा था भगवान ने कहा कि तुम अज्ञान की नौका में बैठोगे तो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। उसने क्या कहा था कि अगर इन सबको मैं मारूंगा तो इन सबका दुख भुगतना पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम दुखों को नष्ट कर दोगे। यहाँ पर अर्जुन ने, भगवान ने अर्जुन को कहा, वो कहता मैं फाइट नहीं करूंगा, और भगवान कहते कि फाइट करो। वो निश्चय करके आया था कि मैं फाइट नहीं करूंगा, भगवान को बोल के बैठ गया मैं नहीं करूंगा, मेरा दृढ़ निश्चय है। और भगवान भी निश्चय करके बैठे थे कि मैं इसको खड़ा करूंगा ही युद्ध करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान के तलवार अस्त्र का उपयोग करो और इस अज्ञानता को, इस संशय को नष्ट करो, और तुम्हें इसका कोई पाप भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कर्म करोगे निष्काम भाव से, निष्काम कर्म योग का पालन करोगे, जो आगे ने आने वाले चैप्टर का शीर्षक है। तो निष्काम भाव से तुम कर्म करोगे, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सुंदर है, आप उसको पढ़ सकते थे। योगा सिस्टम शुरू होता है, तो योगा सिस्टम इंस्ट्रक्टेड इन दिस चैप्टर और सनातन योगा
शुरू से। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्म ज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध तथा श्री भगवान विशेष सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भाव अमृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमश दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विधि देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधन यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। यह सब यज्ञ कहलाते हैं और यह सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को परमान नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आ रही आने वाली परंपरा में होता है, और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म चलाधा वश अन्य को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है।
तो आप इस तात्पर्य में आपने देखा प्रभुपाद ने पूरे अध्याय का समझ लिया है, पूरे अध्याय का यज्ञों की अलग अलग जो श्रेणियां है उसका समझ लिया। भगवान ने अपने कर्मों के विषय में बताया उसका समझ लिया। ये ज्ञान जो सूर्य के देवता को दिया था भगवान ने बताया था उस शुरुआत में उसका समझ दिया। निष्काम कर्म योग से किस तरह से कर्म करना चाहिए उसका समझ दिया। तो ये चौथे अध्याय का पूरा समझ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। तो चौथा अध्याय में ये चीज हमने समाप्त की है। चौथा अध्याय यहाँ पर हम छोटा सा एक्सरसाइज आपके साथ करते हैं। उसके पहले हम आपको इस चैप्टर में यूज हुए हैं वो सब एग्जांपल्स आपको बताना चाहते हैं, जैसे हम आपको लास्ट टाइम भी बताए थे। ओके सो चैप्टर 4 ओके सो चैप्टर 4 में टेक्स्ट नंबर 5 में वैदुर्य मणि का एग्जांपल दिया है। आप जस्ट टेक्स्ट नंबर और उसके सामने उसके उदाहरण को आप नोट कर सकते हो आपके अपने रेफरेंस के लिए। हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। श्लोक नंबर 5 में वैदुर्य मणि का उदाहरण है। फिर छठे श्लोक में सूर्योदय का एग्जाम्पल है, सनराइज का, छठे श्लोक में। बारहवें श्लोक में समुन्दर के बबल्स, बबल्स को क्या कह रहे बुलबुले, बुलबुले समुंदर के बुलबुले, उसकी तुलना की गई है। 14 नंबर का श्लोक जो है उसमें राजा का उदाहरण है। फिर उसी श्लोक में वर्षा का उदाहरण है। उन्नीस नंबर के श्लोक में अग्नि का उदाहरण है। किस नंबर में यंत्र का उदाहरण, मशीन, 21 मशीन। और उसी श्लोक में पशु का उदाहरण है। फिर टेक्स्ट नंबर 24 में दर्द का उदाहरण है, पेशेंट। फिर टेक्स्ट नंबर 35 में वन प्लस वन इज इक्वल टू वन का एग्जांपल है। 36 में समुंदर या फॉरेस्ट फायर फिर 37 में अग्नि का उदाहरण है, 36 में नौका का उदाहरण है, 40 में पशु का उदाहरण है और 42 में शस्त्र का उदाहरण है। भगवान कहते हैं शस्त्र का उपयोग करो। तो इस तरह से यहाँ पर कई उदाहरणों का उपयोग हुआ है। ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि इसमें आपको 15 मिनट चाहिएगा। पांचवें अध्याय की शुरुआत हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। पांचवें अध्याय का अगर आपको ब्रेकडाउन चाहिए तो अभी दे देता हूँ, 5 मिनट में, अभी टाइम है 5 मिनट का। तो पांचवें अध्याय का समय चैप्टर 5 जो है वो चैप्टर 4 के कंटिन्यूएशन में है। प्रश्न ये होता है कि भक्ति में कर्म करना अच्छा है या कर्म का त्याग करना अच्छा है। अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। So, we just give the breakdown of निष्काम कर्म योग। इसमें 6 सेक्शन है, 5वें अध्याय में है तो 29 श्लोक ओनली, लेकिन 6 सेक्शन है। पहले विभाग में निष्काम कर्म योग कर्म संन्यास से आसान है, 1 से 6, टेक्स्ट नंबर 1 to 6। कर्म संन्यास से आसान है, फिर 7 से 12 निष्काम कर्मयोग कैसे करना ये बताया है। फिर 13 से 16 तीन अलग अलग कर्ताओं को समझना,
ये
जीव प्रकृति और परमात्मा ये तीन करता है उसको समझना। फिर 17 से 26 परमात्मा पे स्थिर होना, अर्थात परमात्मा पर स्थिर होकर मुक्ति प्राप्त करना। फिर 2 श्लोक है 27 और 28 अष्टांग युग का ट्रेलर, अष्टांग युग से मुक्ति कैसे मिलती है, प्रीव्यू अष्टांग योग का। और अंत में टेक्स्ट नंबर 29 में शांति सूत्र। हाँ शांति सूत्र लास्ट श्लोक 29 पीस फॉर्मूला, पीस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन। तो ये है तो बहुत छोटा और आसान भी है बहुत। और इसके बाद फिर एक अंतिम अध्याय आएगा 6 जिसमें अष्टांग योग बताया जाएगा और उसके पश्चात फिर भक्ति योग शुरू होगा 7वें अध्याय से। सो वी स्टॉप हियर।